الحمد لله وكفى، سلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، مثل چند دنوں سے مشائخ کے نزدیک اصلاح نفس کا جو نسخہ ہے اس پہ گفتگو ہو رہی ہے، تو مشائخ نے چار چیزیں بتائیں جو اصلاح نفس کے لیے اہم، چار چیزوں میں کمی کرنا ضروری ہے. قلت طعام، کھانے پینے میں کمی کرنا، قلت منام، سونے میں کمی کرنا، قلت طعام سوری قلت کلام، گفتگو میں کمی کرنا، اور قلت اختلاط مع الانام، لوگوں سے میل جول میں کمی کرنا. اس حوالے سے قلت طعام پہ گفتگو ہوئی، اور کل کی مجلس میں ہم نے قلت کلام پہ گفتگو شروع کی. یہ بھی عجیب ہے کہ قلت کلام پہ گفتگو کی. ہاں، بات تو کر رہے کلام کم کرنے کی، مگر گفتگو بھی ساتھ ساتھ ہو رہی ہے. قلت کلام کیوں ضروری ہے؟ کل کی مجلس میں ہم نے بتایا کہ یہ زبان جو ہے، اس زبان سے نکلا ہوا ہر ہر لفظ لکھا جا رہا ہے، ہر ہر لفظ کا جواب اللہ کو دینا ہے. مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، کہ نہیں نکلتا تمہاری زبان سے کوئی لفظ مگر ایک نگہبان فرشتہ اس کو لکھ رہا ہے. تو ایسا نہیں کہ زبان سے جو بولتے جاؤ کوئی سوال و جواب نہیں ہونا، بلکہ زبان سے نکلا ہوا لفظ کی بڑی قدر و قیمت انسان کے نامہ اعمال میں ہے. 100 سال کا کافر مشرک ہے، زبان سے ایک کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، 100 سال کا کفر اور شرک معاف ہو جاتا ہے. تو زبان سے نکلے ہوئے لفظ کی بڑی قدر و قیمت. اسی طرح کل کے مجلس میں ہم نے یہ بھی بتایا کہ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کئی مرتبہ انسان اپنی زبان سے ایسا ایک کڑوا لفظ کہتا ہے، ایسا دل دکھانے والا لفظ کسی کو کہتا ہے، ایک لفظ، اس لفظ کے کہنے پہ اللہ رب العزت اس شخص کو قیامت تک کے لیے اپنے دشمنوں میں لکھ لیتے ہیں. تو اس زبان کا بڑی بڑی ویلیو ہے، اس زبان کا بڑا ایک اثر ہے. تو مشائق نے فرمایا کہ جی اس زبان کو ہی کم استعمال کریں، کیونکہ سب سے زیادہ گناہ اسی زبان سے ہم کرتے ہیں. اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا قول بھی کل کی مجلس میں ہم نے بیان کیا کہ آپ اپنی زبان کو یوں پکڑتے تھے اور لوگوں کو بتاتے تھے کہ یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے زیادہ تر لوگ جہنم میں جائیں گے، اور دوسرے کسی گناہ سے نہیں، زبان کے گناہ سے. کچھ سالکین بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جی زبان سے کیوں روکنا ہے، گفتگو کرنے سے کیا روکا جاتا ہے، اتنی جائز ترین چیز ہے. اور مشائخ کہتے ہیں کہ جی خاموش رہا کرو. کچھ لوگوں کو بڑی حیرت ہوتی ہے کہ خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ اپنے سالکین کے ساتھ گھنٹوں خاموش بیٹھتے تھے، ان کو پریکٹس کرواتے تھے کہ جی خاموش کیسے رہنا. لوگ حیران ہوتے ہیں یہ کیا، مگر جس کی نظر قرآن و حدیث پہ ہے وہ تو چاہے گا میری زبان سے کچھ بھی نہ نکلے. اگر جو واقعتاً ان احادیث کو غور سے پڑھے تو وہ یہی چاہے گا کہ جی زبان سے الفاظ ہی نہ نکلے، خاموش ہی ہو جاؤں، کہ میری پوری زندگی، کروڑوں سال کی جو زندگی ہے اس کی بنیاد اس زبان پہ ہے، اس سے غلط چیز نہ نکل جائے. تو مشائخ تربیت کرتے تھے. تو یہ جو چاروں اصول جو بتائے ہیں مشائخ نے اصلاح نفس کے، قلت کلام، تو قلت طعام، قلت اختلاط مع الانام، یہ چاروں اصول सिर्फ इस्लाह नफ्स करवाने वाले के लिए नहीं, कुरान और हदीस को देखेंगे तो ये हर मुसलमान के लिए चारों उसूल जरूरी है। हाँ, मगर जो शख्स ये चाहता है कि मैं अल्लाह का मुकर्रब बनूं, उसको तो 100% इस पर अमल करना होगा। इस जुबान से जो सबसे बड़ा गुनाह हम करते हैं वो झूठ बोलना है। वो गुनाह अपने वैल्यू के एतबार से, अपनी कदर के एतबार से भी बहुत बड़ा है, और ये है ऐसा गुनाह जो हम सबसे ज्यादा भी करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। तजर्बा यही बताता है, हमारी आदत इसी तरह से है कि ये गुनाह है भी सबसे बड़ा गुनाह। यानी ये वो गुनाह है कि कुरान में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दर्जनों मर्तबा फरमाया कि झूठ बोलने वाले पे अल्लाह की लानत। शायद ही कोई और गुनाह हो जिसपे इतनी ज्यादा अल्लाह की लानत बरसती हो। तो कदर के एतबार से गुनाह छोटा नहीं, गुनाह बहुत बड़ा है, इसी जुबान से तो होता है। और अल्लाह के प्यारे महबूब ने फरमाया कि जो झूठ बोलता है ये सबसे पहली निशानी बयान की मुनाफिक की। तो मुनाफिक की तीन निशानियां, और पहली निशानी है कि अपनी गुफ्तगू में वो झूठ बोलता है। तो कदर के एतबार से भी बहुत बड़ा कबीरा गुनाह है। और तादाद मिकदार के हवाले से भी ये सबसे ज्यादा हमसे होता है। अल्लाह अकबर। मशाए खामोश इसलिए करवाते हैं सालिकीन को, इंसान जब खामोश होता है तो आहिस्ता आहिस्ता उसको अपने कहे हुए अल्फाज उसके कान में पड़ते हैं। आम इंसान जो है वो दूसरों के अल्फाज तो अपने कान से सुनता है, अपने कहे हुए इतनी उसके ऊपर गौर नहीं करता है, जो निकल जाए वो उसे। कल के पूरे दिन में हमने कितने अल्फाज कहे, आज हमसे अगर कोई पूछे हमें याद भी नहीं होगा। मगर अगर हम ये कहेंगे ना कि फला आदमी ने कल तुमसे क्या बात की, हमें याद होगा कि उसने क्या बात की। उसका मतलब यही है कि अपने कहे हुए अल्फाज हम नहीं सुनते हैं। और हमारी पकड़ जो है वो दूसरे के कहे हुए अल्फाज पे नहीं होनी है, अपने कहे हुए अल्फाज को। तो इसलिए ये जरूरी है। तो आम बंदा तो यही कहेगा कि ये मशाए को क्या हो गया है, बोलने पे भी पाबंदी लगाई जा रही है। मगर ये सबसे पाबंदियों में सबसे अहम पाबंदी है जो बोलने पे लगाई जाती है। और जिसके ऊपर बोलने पे पाबंदी लगती है, जो अपनी आवाज को खुद सुनना शुरू कर देता है, फिर उसकी जुबान के अंदर से गुनाह आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाते हैं। फिर जुबान से जो अल्फाज निकलते हैं हीरे और मोतियों की तरह होते हैं। इसलिए इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह का मशहूर कौल है कि जबान जो है वो चमचे की मानिंद है और दिल जो है वो हंडिया की मानिंद। जब इंसान खामोश होता है, दिल पाक हो जाता है, फिर उसकी जुबान से जो है वो अच्छी चीजें निकलती हैं जिससे उसको अजर मिलता है। तो जुबान से बड़े गुनाहों में जो बड़ा गुनाह होता है वो झूठ बोलना है। और इस झूठ बोलने का इतना बड़ा असर है कि इंसान झूठ बोलने की वजह से मुनाफिकत के दर्जों में चले जाता है। इसलिए मशायख बहुत ही एहतियात फरमाते थे सच और झूठ के मामले। बल्कि सच बोलने पे अल्लाह वाले कई मरतबा बड़े मशहूर हुए, अल्लाह ने सिर्फ इस एक सिफत पे उनको बड़ी इज्जत दिलाई। सच बोलना आसान नहीं है, एक आध मरतबा तो बोलना आसान है, जिंदगी भर हर वक्त सच बोलना और हर एक से सच बोलना बड़ा मुश्किल काम। हमारे मुल्क के एक साहब से बहुत मशहूर हो गए, नेक आदमी थे मगर अल्लाह ने उनको बड़ी इज्जत दे दी। अब हर बंदा उनसे मिलना चाहता था, हर वक्त हर इतने सारे लोग घर पे आए बैठे हैं मिलने के लिए, तो अब कुछ तो कहना है ना, इंसान 10 काम और करने हैं। तो गो के नेक थे और गो के नेकी ही वजह बनी लोगों की उनसे मुलाकात करने की, मगर बहरहाल लोगों को दूर करने के लिए कोई ना कोई जू मानी कुछ ना कुछ कहना तो पड़ा ना। तो हजरत ने घर के कमरे के अंदर 3-4 कमरे जो है ना, एक का नाम इस्लामाबाद रख दिया, एक का नाम लाहौर रख दिया। तो बाहर कोई बंदा आता तो कहते जी कहाँ है, वो कहते जी इस्लामाबाद गए कभी कभी कहते जी लाहौर गए हर वक्त सच कहना, हर एक से सच कहना बड़ा मुश्किल काम, नेक लोगों के लिए मुश्किल काम है। कह रहा तो नहीं चाह रहा था मगर कह रहा हूं, कभी कभी बेगम अगर सर पे पिस्तौल रख के कहती ना, तेरी मां से तूने सच कहा ना तो मैं जा रही हूं फिर झूठ कहना ही पड़ता है हर वक्त सच कहना, हर एक से सच कहना वाकई बड़ा इम्तिहान है। इस इम्तिहान में कामयाब होना वाकई अल्लाह वालों का काम है। आम बंदे का क्लास नहीं है कि वो हर वक्त सच कहे, हर एक से सच कहे, मगर ये भी ना हो कि आदत ही झूठ बोलने की हो जाए। मगर जो हर वक्त सच कहता है वाकई अल्लाह ताला उसको एक बहुत बड़ा मर्तबा देते हैं। हमारे मुल्क के एक बुजुर्ग गुजरे हैं, मुफ्ती इलाही बख्श रहमतुल्लाह अलैह, यानी अभी मुल्क बना नहीं था, अंग्रेजों के जमाने में ये बुजुर्ग थे। और हजरत की सच्चाई की इतने चर्चे थे, सिर्फ मुसलमान नहीं हिंदू अंग्रेज ये सब मानते थे, से बुजुर्ग की जुबान से झूठ नहीं निकल सकता है। किसी जगह के ऊपर तनाजा हो गया मुसलमानों और हिंदुओं का, और तनाजा इतना बढ़ गया और अंग्रेज की हुकूमत थी और अंग्रेज जज था, उसने कहा कि तो हंगामे हो जाएंगे। और तनाजा इसलिए बढ़ गया कि मुसलमान ने कहा कि ये जमीन मुझे मिलेगी ना, मैंने मस्जिद बना देनी है इसमें, इन हिंदुओं को बताने के लिए। और हिंदुओं ने कहा कि जी हमें मिलेगी तो हम मंदिर बनाएंगे इसमें। अब तो ये पूरे हिंदुस्तान में खबर ऐसे आग की तरह फैली हुई थी कि फैसला क्या होता है, और फैसला अगर जो भी होना था लड़ाइयां होनी थी इसके बाद, क्योंकि दूसरे ने फैसले को तस्लीम ही नहीं करना था। जज ने कहा कि मैं अलग अलग दोनों टीमों से बात करता हूं। तो पहले हिंदुओं को बुलाया कि जी कोई हल ऐसा है कि जिसके फैसले के बाद जो है वो कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, कोई ऐसा बंदा है जिसकी बात पे दोनों अग्री कर जाएं। हिंदुओं ने अंग्रेज जज को कहा कि मुफ्ती इलाही बख्श एक मुसलमानों के आलिम दीन है, मुफ्ती हैं, वो जो फैसला करेंगे हमें मंजूर है, वो झूठ नहीं बोलेंगे। जज ने कहा मसला ही खत्म है, मुसलमानों का मुफ्ती और उसकी बात अगर हिंदू मान रहे तो मुसलमान तो मानेंगे उसकी बात। जज ने कहा बहुत अच्छा ठीक है, मुसलमानों को बुलाया कि जी वो मुफ्ती इलाही बख्श जो गवाही देंगे जो फरमाएंगे उस पे उन्होंने कबूल करना है हिंदुओं ने उनकी बात। आप लोगों का क्या ख्याल है, आप भी उनकी बात को कबूल करेंगे? और जी बिल्कुल कबूल करेंगे। मुसलमान तो ये सोच रहे थे कि जी मुसलमान मुफ्ती है, आलिम दीन है, तो मस्जिद के खिलाफ तो उसने कोई फतवा नहीं देना है। तो दोनों पार्टी अग्री हो गए कि मुफ्ती इलाही बख्श रहमतुल्लाह अलैह उनको बुलाया जाएगा और वो फैसला देंगे। मुफ्ती इलाही बख्श रहमतुल्लाह अलैह अंग्रेज की अदालत में बुलाया गया और जज ने कहा कि जी ये जमीन का टुकड़ा है, इस पे तनाजा है, आपको बहुत अर्सा पहले बताया गया था कि ये तनाजा है और आपका फैसला दोनों पार्टी ने कबूल करना है, तो आपकी क्या तहकीक है इस बारे में? हजरत मुफ्ती इलाही बख्श रहमतुल्लाह अलैह फरमाया, मेरी तहकीक के मुताबिक ये जमीन हिंदुओं की है, मुसलमानों के तो हवास जो है वो बाख्ता हो ही गए हैरानगी से, मगर अंग्रेज जज था वो भी हैरान हो गया और अक्सर हिंदू भी हैरान हो गए कि जी मुसलमान मुफ्ती ने ये फैसला हिंदुओं के हक में दे दिया। हत्ता के अंग्रेज जज ने जब फैसला सुनाया तो उसने तारीखी अल्फाज कहे कि आज के इस मुकदमे में मुसलमान तो हार गए मगर अपनी सच्चाई की वजह से इस्लाम जीत गया। तो ये वाला फैसले में मुसलमान हार गए मगर इस्लाम जीत गया। तो सच जो है वो असल चीज है, इसलिए किल्लते कलाम इसलिए करवाया जाता है कि जुबान के गुनाह खत्म हो जाए। जुबान अल्लाह को याद करने के लिए ज्यादा तैयार हो जाए और इंसान के दिल की बीमारियां दूर हो जाए, इस्लाह नसीब हो जाए। अल्लाह ताला हमें ये नेमत नसीब फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सलातु वस्सलाम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन, अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका इल्मन नाफिअ व अमलन मुतकब्बला व लिसानन ज़ाकिर وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.